पृष्ठ संख्या 25, अध्याय 4, प्राचीन ताल और उनके 10 प्राण की संकल्पना। प्राचीन काल में ताल लघु गुरु एवं प्लुत इत्यादि छंदोबद्ध अंगों से रचे गए हैं। लघु गुरु की संकल्पना छंद शास्त्र से तथा प्लुत की संकल्पना साम गायन से आती है, अतः ताल की निर्मिति छंदों से ही हुई है। यह विचार सहज ही जांचने योग्य है। उस काल में ताल मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किए जाते थे, क्योंकि मात्रा की संकल्पना ही तब विद्यमान नहीं थी। किंतु आज का ताल शास्त्र का विद्यार्थी मुख्यतः मात्रा से परिचित हुआ होने से प्राचीन ताल को समझ लेते समय वह पशुपेश में पड़ जाता है। मेरा अपना भी यही अनुभव है। उदाहरण के तौर पर, पहले दादरा ताल लघु गुरु प्लुत अंगों से व्यक्त किया जाता था, किंतु आज हम दादरा को 6 मात्राओं का और उसके खंड 2 और 4 अथवा 3 और 3 मात्राओं के मानते हैं। भरत के नाट्य शास्त्र के तालाध्याय में 108 प्राचीन तालों एवं 7 सालग सूडग तालों का वर्णन है। पहले तालों का वर्गीकरण निम्नानुसार हुआ करता था। वर्गीकरण तत्व अ, मार्गी ताल क्लासिकल, देशी ताल पॉपुलर। वर्गीकरण तत्व ब, शुद्ध ताल प्योर, सालग ताल मिक्स्ड, संकीर्ण ताल प्रोमिसस, अनियमित ताल। आज के गायन में ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना जैसे अनेक प्रकार गाए जाते हैं। ध्रुपद धमार गायन शैली में अस्थाई, अंतरा, संचारी एवं आभोग, ये 4 गीत अवयव हैं। तो आज के ख्याल टप्पा गायन में अस्थाई एवं अंतरा ये 2 अवयव माने जाते हैं, किंतु प्राचीन संगीत में 7 गीत एवं 7 गीतक, इस तरह 14 प्रकार के प्रबंध प्रस्तुत किए जाते थे। इनमें से प्रत्येक के अवयव अलग अलग रहा करते थे, उनकी संज्ञाएं अलग एवं उनका गाने का अनुशासन भी विशिष्ट प्रकार से बांधा जाता था। इनमें से प्रत्येक प्रबंध के लिए अलग अलग ताल होता था। इन 14 प्रबंधों के अलावा भरत ने धुआ नाम का एक स्वतंत्र प्रबंध रचा। यह धुआ प्रकार आज के नाट्य गीतों की जननी है। पृष्ठ संख्या 26। उपर्युक्त 15 प्रकार के गीत एवं गीतक रागबद्ध एवं तालबद्ध किए होते थे, किंतु वे सब छंदों गीत पद्धति से प्रस्तुत किए जाते थे। आज की गायन पद्धति में यह छंदोबद्धता नहीं है। आज के गीत तालों की मात्राओं के वर्तुल में रचे होते हैं, तो प्राचीन गीत लघु गुरु एवं प्लुत इत्यादि काल पद्धति के अनुसार गाए जाते थे। 15 प्रकार के गीत एवं गीतक, उनके अलग अलग अवयव और उस काल की पद्धति के अनुसार प्रत्येक गीत 3 लयों में प्रस्तुत करने की पद्धति आदि सब अत्यंत शास्त्रोक्त पद्धति से ही हुआ करता था। यह पद प्रस्तुतिकरण ताल एवं लय में व्यवस्थित रूप में हो, इसलिए विविध क्रियाओं के द्वारा ताल पकड़ने की एक विशिष्ट पद्धति निर्माण हो गई थी। यह संगीत अत्यंत सूक्ष्म लय में एवं विविध लय प्रकारों में बांधा हुआ होने से उसके लिए एक गहरे ताल शास्त्र का निर्माण हुआ और आगे चलकर वह विकसित हुआ। यह शास्त्र में विविध ताल लय की क्रियाओं के लिए विविध नियम, बंधन, मार्गदर्शक तत्व एवं व्याख्याएं निर्माण हुई। यह सब ताल शास्त्र सारंगदेव के संगीत रत्नाकर ग्रंथ के तालाध्याय में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। उन्हें ताल की 10 विशेषताएं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत हुई, इसीलिए उन्होंने उन्हें ताल के 10 प्राणों के नाम से संबोधित किया है। इन 10 प्राणों का उल्लेख उन्होंने एक श्लोक में इस प्रकार किया है, अथ 10 प्राणा उच्यन्ते, कालो मार्गः क्रियांगानि ग्रहो जाति कलालयः यति प्रस्तार कश्चेति ताल प्राणा 10 स्मृताः। ताल के ये 10 प्राण संगीत के प्रस्तुतिकरण में उस जमाने में उपयोग में लाए जाते थे, अर्थात उस समय संगीत का प्रस्तुतिकरण निम्नांकित 2 गायन प्रकारों से होता था, पहला मार्गी संगीत, दूसरा देशी संगीत। मार्गी संगीत यानी खोज कर संस्कार करके प्राप्त किया गया संगीत, इसे अपौरुषेय अनादि परंपरा प्राप्त माना जाता था और परमेश्वर प्राप्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए गाया जाता था। यह संगीत बहुत पहले लुप्त हुआ है, तथापि बदले हुए रूप में उसकी अस्पष्ट रूपरेखा आज के संगीत में भासमान होती है। देशी संगीत यानी स्थान विशेष के लोगों से संबंधित संगीत, यह संगीत में लोकप्रिय था। यह संगीत समाज में लोकप्रिय था, पृष्ठ संख्या 27, एवं उसका उद्देश्य मनोरंजन एवं आनंद प्राप्ति था। मार्गी संगीत के लिए मार्गी तालों का अवलंब किया जाता था, तो देशी संगीत के लिए देशी तालों का। इन 10 प्राणों में से कुछ प्राण मार्गी तालों के, कुछ देशी तालों के तथा कुछ साथ संगत के लिए उपयोग में लाए जाते थे। आज यह प्राचीन गायन शैली एवं गायन वादन क्रिया प्रचलित न होने से और उस संबंध में किसी ने भी ठीक तरह से कुछ न लिख रखने के कारण इस विषय को अवगत करते समय अध्ययन करने वाले बहुत ही पशुपेश में पड़ जाते हैं। 10 प्राण विषय के अधिकारी व्यक्ति पंडित भाई गायतोंडे के साथ चर्चा करने के पश्चात और उनके मार्गदर्शक विचारों पर चिंतन करने पर इन प्राणों की विशेष उपयुक्तता मुझे निम्नानुसार प्रतीत होती है। काल अर्थात संपूर्ण संगीत का प्रस्तुतिकरण, मार्ग अर्थात देशी ताल, क्रिया अर्थात देशी ताल, अंग अर्थात देशी तथा मार्गी ताल, कला अर्थात मार्गी ताल, जाति अर्थात संपूर्ण संगीत का प्रस्तुतिकरण तथा ताल व्यवस्था, ग्रह अर्थात साथ संगत, लय अर्थात संपूर्ण संगीत का प्रस्तुतिकरण, यति संपूर्ण संगीत का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तार अर्थात साथ संगत, ये इनकी काल मार्ग क्रिया अंग कला जाति ग्रह लय यति प्रस्तार की विशेषता हैं। 10 प्राण पर विविध ग्रंथों के सहारे इस विषय को समझ लेने का मैंने प्रयत्न किया है, साथ ही साथ जानकार लोगों से के साथ चर्चा करके उससे मुझे जो अर्थ बोध हुआ तद अनुसार 10 प्राण के विषय में निम्नांकित जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राण अर्थात काल, टाइम, काल यानी समय। संगीत के प्रस्तुतिकरण में जो समय उपयोग में लाया जाता है वही काल है। काल की गणना करने के लिए संगीत शास्त्रकारों ने अत्यंत सूक्ष्म, पृष्ठ संख्या 28, काल परिणामों से लेकर स्थूल काल परिणामों तक काल आकारों के विविध रूप बताए हैं। इन विविध परिणामों की सहायता से संगीत के काल को नापा जाता है और पर्याप्त पर्याय से इनसे ताल का काल भी नापा जा सकता है। संगीत की विविध अभिव्यक्तियां विभिन्न परिणामों परिमाणों के माध्यम से कलात्मकता के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। क्षण संगीत के काल का सूक्ष्मतम नाप है। उक्त विविध काल परिमाणु का कोष्ठक निम्नानुसार है। 8 क्षण याने 1 लव, 8 लव याने 1 काष्ठा, 8 काष्ठा याने 1 निमेश, 8 निमेश याने 1 कला, 2 कलाएं याने 1 त्रुटि या अणुद्रुत, 2 अणुद्रुत याने 1 द्रुत, 2 द्रुत याने 1 लघु, 2 लघु याने 1 गुरु, 3 लघु याने 1 प्लुत, 4 लघु याने 2 लघु, 2 गुरु याने 1 काकपद। सारंगदेव और अन्य कुछ ग्रंथकारों ने इन विविध काल नापों का विस्तृत कोष्ठक बनाया है, किंतु भरत के नाट्यशास्त्र में सूक्ष्म काल नापों का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि की राय में लघु काल याने 1 मात्रा एवं उक्त काल का आकार याने कचटतप इन 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चार करने के लिए जितना समय लगता है वह काल है। अलग अलग प्रदेशों में 1 लघु काल की लंबाई 1 निमेश से लेकर 5 निमेशों तक की मानी गई है। मार्ग ताल में 5 निमेशों की 1 लघु 1 मात्रा बताई गई है, तो तमिल ग्रंथों में देशी ताल में लघु मात्रा 4 निमेशों की बताई गई है। संगीत के काल मापन के ये जो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक के विविध परिमाण बताए गए हैं और जिनके सहारे तालबद्ध संगीत पेश किया जाता है तथा विविध मार्गों से उसका प्रस्तुतीकरण होता है, वे परिमाण सांगीतिक क्रिया के प्रस्तुतीकरण में अलग अलग कारणों से उपयोग में लाए जाते थे। इनमें से कुछ परिमाण तालाकृति के महत्वपूर्ण अवयव बन गए हैं तथा उन्हें ताल के अंग के नाम से संबोधित किया जाता है। इन अंगों को ताल का 1 प्राण माना गया है। पृष्ठ संख्या 29। इसके विषय में आगे विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। क्षण से लेकर काक पद तक के जो विविध काल परिमाण बताए गए हैं उनमें क्षण से त्रुटि तक के परिमाण सूक्ष्म काल परिमाण हैं और अणुद्रुत से काक पद तक के स्थूल काल परिमाण हैं। बहुतांश सांगीतिक व्यवहार में स्थूल काल परिमाणों का ही उपयोग किया जाता है। संभवतः सूक्ष्म काल परिमाणों का उपयोग सूक्ष्म लयकारी के प्रस्तुतीकरण में हुआ करता होगा, किंतु इनका प्रयोग निश्चित रूप में किस प्रकार किया गया था इस संबंध में स्पष्ट रूप में कुछ नहीं लिखा गया है। इस संगीत में उसकी उपयोगिता क्या है इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। दूसरा प्राण अंग, कंस्टिटेंट यूनिट्स ऑफ ताल। अंग यानि शरीर का भाग या अवयव और ताल अंग यानि ताल का भाग या अवयव। शरीर का व्यक्तित्व शरीर के विविध अंगों के जरिए पहचाना जाता है। प्रत्येक ताल का आकार अलग अलग होता है। समान मात्रा संख्याओं के ताल के आकार रूप भी अलग अलग होते हैं, किंबहुना उनके अंग अलग अलग होने से ही उक्त ताल का स्वतंत्र अस्तित्व समर्थनीय होता है। केवल मात्राओं से ताल को विशिष्ट आकार प्राप्त नहीं होता। ताल, लघु, गुरु, प्लुत आदि भिन्न भिन्न मात्रा काल के घटकों से सिद्ध होता है और उन घटकों के कारण ही उनका स्वतंत्र रूप निर्माण होता है जो श्रोताओं को महसूस होता है। ताल की निर्मिति जिन अंगों से की गई है उनके नाम निम्नलिखित हैं: अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। अणुद्रुत ताल का सर्वाधिक छोटा अंग है और वह 1/4 मात्रा का होता है। 1/2 मात्रा काल की द्रुत तथा दो द्रुतों की एक मात्रा। मात्रा और लघु समानार्थी शब्द हैं। दो मात्राओं का गुरु, तीन मात्राओं का प्लुत और चार मात्राओं का काकपद। कुछ काल के बाद देशी तालों के लिए ताल के आकार लंबे काल के होने की आवश्यकता महसूस होने पर इन अंगों का मात्रा काल शास्त्रकारों ने चार गुना बड़ा किया है। आज की ताल की संकल्पना में खंड को ताल का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। व्यापक अर्थ में खंड एवं अंग समानार्थी शब्द हैं, ऐसा कहना उचित होगा। विविध ताल क्रियाएं ठीक ठीक समझ में आ जाएं, अर्थात तालांगों का स्पष्टतः ज्ञान हो, इसलिए संगीतकारों ने इन अंगों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। पृष्ठ संख्या 30। उस जमाने में इन चिन्हों की मदद से ताल को विविध क्रियाओं द्वारा सुलभता तथा निश्चितता से पूर्णतः समझकर प्रस्तुत किया जाता था। अतः इन अंगों को उनके चिन्हों सहित पुनः लिखकर उनका ठीक अर्थ समझ लेंगे। अणुद्रुत का जो चिन्ह है वो अर्धचंद्राकार है और मात्राकाल 1/4 या 1। द्रुत का चिन्ह पूर्ण चंद्राकार है या 0 है, उसका मात्राकाल 1/2 या फिर 2। द्रुत विराम का पूर्ण चंद्राकार पे के ऊपर अर्धचंद्राकार, जिसका मात्राकाल 3/4 है और या 3 है। लघु का चिन्ह है खड़ी पाई, इसका मात्राकाल 1 या 4। लघु विराम का खड़ी पाई के ऊपर एक अर्धचंद्र एवं इसकी मात्राकाल 1/2 या 6। गुरु का एस या मात्राकाल इसका 2 है या फिर 8। प्लुत का एस के ऊपर एक तिरछी रेखा, इसके मात्राकाल 3 या 12। काकपद का प्लस का चिन्ह है, मात्राकाल 4 या 16। काकपद, हंसपद, काकपद यानि 4 मात्रा का अक्षरकाल। यह ताल के आरंभ में तथा ताल के बीच में नहीं आता, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और वह गुरु के पहले अथवा बाद में तथा प्लुत के जोड़ में भी नहीं आ सकता। तात्पर्य, वह सिर्फ ताल के अंतिम भाग में लघु या द्रुत मात्रा काल के साथ ही आ सकता है। आचार्य नारद की राय में अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु और प्लुत ये 5 अंग हैं। इनमें से प्रत्येक अंग के लिए एक एक देवता माना गया है। इन 5 अंगों के लिए संगीत शास्त्र में अनेक समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु उन शब्दों से कोई खास अर्थबोध नहीं होता। संगीत रत्नाकर में अणुद्रुत, द्रुत, द्रुत विराम, लघु, लघु विराम, गुरु और प्लुत ये ताल के 7 अंग बताए गए हैं। उन विविध अंगों के स्वामियों, देवताओं का वर्णन भी उक्त ग्रंथ में किया गया है, किंतु काकपद अंग के विषय में उसमें कोई उल्लेख नहीं है। लघु अक्षर काल का आकार, लंबाई यानि 1 मात्रा और 1 मात्रा यानि लघु काल, अर्थात 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चार करने में जितना समय लगता है उतना काल कहा गया है। उक्त काल के 2 गुने काल को गुरु, 3 गुने काल को प्लुत और 4 गुने काल को काकपद कहना है। यह तो अस्पष्ट ही हुआ। आज के प्रचलित ताल का व्यक्तित्व अथवा पहचान ताल की कुल मात्रा संख्या और उसके खंडों के जरिए हुआ करती है और ताल का गणन एवं प्रदर्शन विधि सुनिश्चित हस्त क्रियाओं के द्वारा हुआ करता है। आज के ताल का यह गणना ताली और खाली की सशब्द एवं निःशब्द क्रियाओं द्वारा किया जाता है। ताली और खाली की क्रियाएं हमें उक्त तालों के खंडों की अनुभूति पहचान करा दिया करती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आज के ताल का घटक खंड उसके प्रस्तुतीकरण में जो भूमिका अदा करता है, वही भूमिका अंग नाम का प्राण प्राचीन कालों में अदा करता था।